अब जिसने रोना हो इस मुल्क पर रोवे, और मुझे इस्लाम के पहले आसार पर बहुत गम हुआ कि क्यों कर दूर हो गए, और नीज दिनों पर भी अफसोस हुआ कि वो कैसे बदल गए और लोगों ने सीधी राह को छोड़ दिया और वादियों और टेढ़ी राहों और दुश्वार गुजार और तंग तरीकों की तरफ झुक गए। कई ऐसे आदमी थे कि जो इस्लाम में बड़ी सख्ती से औकात बसरी करते थे और गमों में उम्र काटते थे। फिर ईसाई मज़हब में उन्होंने एक चरागाह देखा और ईसाइयों को अपनी दुनियावी लालचों का महल पाया। सो भूख की तकालीफ ने उनको इस बात की तरफ मुस्तर किया कि वो ईसाइयों में जा मिलें, लिहाजा उन्होंने इस्लाम को तर्क करके सख्ती की वजह से और नीज़ अयाशी और शराब नोशी के शौक़ से ईसाइत को इख्तियार किया। और फिर बावजूद इन हाजतों के वो लोग सफ़ी और जाहिल थे और ना इल्म और अक़ल से कुछ हिस्सा था और ना परहेज़गारी और इफ़त से बहरा। इसीलिए उन्होंने नफ्से अम्मारा की ख्वाहिशों को इख्तियार किया और उनकी बदबख्ती ने हलाकत और गुमराही की तरफ उनका मुँह फेर दिया। इसी तरह बहुत से बुज़ुर्गों और सादात और शरीफों की औलाद ईसाइयों की तरफ झुक गई और गुमराही के प्याले पिए, क्योंकि उन्होंने ईसाई मज़हब को देखा कि ईसाई होने वालों पर इबाहत के दरवाज़े खोले हुए हैं और हुरमत और अदम हिल्लत की तंगियों से उनको बाहर निकाल दिया है। फिर पादरी लोग उनकी इब्तदाई ज़माने में माल और दौलत से उनकी मदद करते हैं और किसी मासियत पर कुछ जजर और तौबीख नहीं करते और किसी बड़े गुनाह पर कुछ बहुत मलामत नहीं करते, क्योंकि नौ ईसाई पाक करने वाले कफ़ारे के साए के नीचे आ जाते हैं। इसी तरह नौ ईसाइयों की जुरत बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि उनमें से अक्सर की इबाहत आदत हो जाती है और उसकी बदबू को खुशबू और पाक ख्याल करते हैं और इस्लाम से सख्त बेजार हो जाते हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते हैं। बाद इसके जो किसी वक्त मुसलमान थे, और थोड़े ऐसे भी हैं जो शर्म रखते हैं, इसी तरह करते रहते हैं ताकि पादरियों को राज़ी करें और उनसे पैसा इकट्ठा करें और मालदार हो जाएं। सो उनको पादरियों के रुपए से ताजगी हासिल हो जाती है और उनके फूलों से वो ताज़ा हाल रहते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी खुशहाली और आसूदगी में ऐसे हो जाते हैं कि गोया वो एक बाग हैं मुज़य्यन और आरास्ता, जिसके फूल गुनागुन और रंगा रंग हैं। और इसी तरह उनके पादरी उन खसलतों और बदगोई और बदजुबानी और कजबहसी और बेहूदगी की वजह से उनसे प्यार करते हैं और गुमान करते हैं कि वो दिली खुलूस से उनके दामन से वाबस्ता हो गए। बस हर एक जगह जो वो वारिद हों और हर एक फिरोदगाह में जो वो उतरें, उन पर एतमाद करते हैं। उन लोगों की ज़ाहरी सफाई और नेक बख्तों का सा मुँह बनाया हुआ पादरियों को इस धोखे में डालता है कि वो अपने हम नवाला और हम प्याला होने और हमराज होने के लिए उन लोगों को पसंद कर लेते हैं और एहसान और मुरव्वत के साथ पेश आते हैं। बस ये लोग दौलतमंदी की चादरें नाज से खींचने लगते हैं और अपने चेहरों को जो फराखी की हालत में होते हैं जीनत देते हैं। फिर उन दोस्तों को मिलते हैं जो शाना के दंदानों की तरह उनसे बदी में बराबर और हम ख्याल थे और तरह तरह के फ़क्र फाका की सख्ती में पड़े हुए थे, और उनसे अपने किस्से बयान करते हैं कि वो कैसी तंगी और तकलीफ़ से फराखी में आ गए, और उनके पास पादरियों के नेक सलूक का ज़िक्र करते हैं और वो सब कुछ बयान करते हैं जो उनके दायमी वजीफ़े हुए और जो कुछ उन्होंने माल से जेब पर किए। इसी तरह उनको हमेशा रगबत देते रहते हैं और मालों और तरह तरह के वसाइल शहवात की तरफ उनको तरगीब देते हैं, यहाँ तक कि उन पर भी नसरानियत की ख्वाहिश गालिब आ जाती है और तमा की हवा उनके दिलों के नूर को उड़ा कर ले जाती है। बस मुर्तद होना दिल में ठान लेते हैं और दिल को इस पर बवजह खबासत मवाद पुख्ता कर लेते हैं। फिर ये कहते हुए मुर्तद हो जाते हैं कि वो सच्चाई के मुतलाशी थे, और इस बद मजहबी की गर्म बाजारी का असल सबब यह है कि अक्सर लोग इस ज़माने में दुनिया की तरफ झुक गए हैं और खुदा ताला का खौफ कम हो गया और दिल में उसकी महब्बत बाकी न रही। बस जबकि उन लोगों ने दुनिया की जीनत को पादरियों के हाथ में देखा तो अपने दिलों की रगबत से उनकी तरफ मायल हो गए। सो इसीलिए हज़ार हा लोग उनकी तारीकी में दाखिल हो रहे हैं और चराग रोशन को छोड़ते जाते हैं। सो इन आफतों के वक्त में सिर्फ मुबाहिसा जो ख्वारिक से खाली हो कुछ फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि ऐसे लोगों का असल मकसूद दुनिया है और नीयतों में फसाद भरा हुआ है, और इस वक्त ईमान के ताज़ा करने के लिए निशानों की हाजत है। और बहुत मुद्दत तक आलिमों ने उनको जगाया پس وہ بتکلف سوئے رہے، اور واز کرنے والوں نے ان کو اپنی طرف کھینچا، پس وہ پیچھے ہٹ گئے، اور ان کو نہ براہین عقلیہ نے نفع دیا اور نہ نصوص نقلیہ نے، اور تجاوز اور تعصب میں بڑھ گئے اور عدل اور انصاف کو چھوڑ دیا، اور اس میں بھید یہ ہے کہ دل اندھے ہو گئے اور عقلیں مقدر ہو گئیں، اور نفسوں نے جوش مارا اور دنیا کی خواہشیں غالب آ گئیں اور پردے بڑھ گئے، سو وہ دیکھ کر پھر نہیں دیکھتے اور سنتے ہیں اور پھر بھلا دیتے ہیں، پس اس بیماری کا بجز اس کے اور کوئی علاج نہیں کہ آسمان سے نور نازل ہو اور پے در پے نشان ظاہر ہوں، کیونکہ ایمان ضعیف ہو گیا اور شیطانی وسوسے بڑھ گئے ہیں، اور نا امیدی تک نوبت پہنچ گئی ہے، اور اکثر دلوں پر دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے، اور جہاں دنیا کو پاویں بس اسی طرف دوڑتے ہیں، اور ایمان اور ملت سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ بس اس جگہ ایک مصیبت نہیں بلکہ دو مصیبتیں ہیں، ایک مصیبت عیسائی ہونے کی اور دوسری مصیبت ضعف ایمان کی، اور میں اکثر مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ گویا ایمان ان کے دل میں سے نکالا گیا ہے، اور گناہوں کی آگ نے ان کے نیک عمل کو جلا دیا ہے، اور یہی مرتد ہونے کا سبب ہے، کیونکہ خدا نے ان کو مفسد پایا اور شکاری کی طرح مکار دیکھا، اس لیے انہیں ان لوگوں کی طرف پھینک دیا جو فساد کو دوست رکھتے ہیں، اور مرتدوں کے زیادہ ہونے کا یہی بھید ہے، اور ان لوگوں کی کثرت کا یہی سبب ہے جو صلیب پر جھکتے اور خدا سے بھاگتے ہیں۔ ان کو نہ کسی واعظ کا واعظ نفع دیتا ہے اور نہ کسی ناصح کی نصیحت کارگر ہوتی ہے، اور وہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلا کھلا نشان نہ آوے، اور جب تک کہ روشن خارق ظاہر نہ ہوں۔ پس خدا تعالیٰ نے ایک انسان کو مسیح کے نام پر ملت اسلام میں بھیجا تا اس امت کی بزرگی ظاہر ہو، اور یہ بھیجنا اس وقت ہوا کہ جب فساد کمال کو پہنچ گیا اور لوگ کثرت سے مرتد ہونے لگے، اور ضیاب نے تباہی ڈالی اور کلاب نے آوازیں بلند کی، اور بہت سی کتابیں گالیوں سے بھری ہوئی تالیف کی گئیں، اور جھوٹ کی فوجوں اور ان کے سواروں اور پیادوں نے اسلام پر چڑھائی کی، اور زمین پر ایک زلزلہ آیا، اور گمراہی کمال کو پہنچ گئی، اور ظالموں کی کاروائی لمبی ہو گئی، اور خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ مسیح موعود کے ساتھ صلیب کو توڑے گا اور اپنے عہدوں کو پورا کرے گا، اور خدا تعالیٰ تخلف وعدہ نہیں کرتا۔ حاشیہ: خدا تعالیٰ کی عادت یوں جاری ہوئی ہے کہ وہ بر وقت کسی فساد کے تجدید دین کے لیے اثر نو توجہ فرماتا ہے، بس اسی لیے اس نے میرے پر تجلی کی تاکہ اجساد میں روح پھونکے، اور مجھے مسیح اور مہدی بنایا، اور تمام سامان رشد کا مجھے عطا فرمایا، اور مجھے وصیت کی کہ میں نرم زبانی اختیار کروں اور سختی اور افروختہ ہونے کو چھوڑوں، مگر کثر صلیب کا جو لفظ حدیثوں میں آیا ہے وہ بطور مجاز کے استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے مراد کوئی جنگ یا دینی لڑائی اور در حقیقت صلیب کا توڑنا نہیں ہے، اور جس شخص نے ایسا خیال کیا اس نے خطا کی ہے، بلکہ اس لفظ سے مراد عیسائی مذہب پر حجت پوری کرنا اور دلائل واضح کے ساتھ صلیب کی شان کو توڑنا ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم نرمی اور حلم کے ساتھ حجت کو پوری کریں اور بدی کے عوض میں بدی نہ کریں، مگر اس صورت میں جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے اور اہانت کرنے اور فحش گوئی میں حد سے بڑھ جائے، پس ہم عیسائیوں کو گالی نہیں دیتے اور دشنام اور فحش گوئی اور حتک عزت سے پیش نہیں آتے، اور ہم صرف ان لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بصراحت یا اشارات سے گالیاں دیتے ہیں، اور ہم ان پادری صاحبوں کی عزت کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں دیتے، اور ایسے دلوں کو جو اس پلیدی سے پاک ہیں ہم قابل تعظیم سمجھتے ہیں اور تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، اور ہمارے کسی بیان میں کوئی ایسا حرف اور نقطہ نہیں ہے جو ان بزرگوں کی کثر شان کرتا ہو، اور صرف ہم گالی دینے والوں کی گالی ان کے منہ کی طرف واپس کرتے ہیں تا ان کے افتراء کی پاداش ہو۔ من ہو صفحہ نمبر 79۔ اور خدا تعالیٰ تخلف وعدہ نہیں کرتا، اور جو کچھ چاہتا ہے ظہور ملاتا ہے، بس یہ وعدے کا مقتضا تھا کہ وہ کثر صلیب کے لیے اپنے مسیح کو بھیجے، اور کریم جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، کیونکہ نقض عہد جھوٹوں کی خصلتوں میں ہے، سو یہ امر اصدق الصادقین سے کیوں کر صادق ہو سکے، اور وہ قدوس آسمانوں اور زمین کا نور ہے، उसकी तरफ झूठ और तखल्लुफ़ वादा मखलूक की तरह मंसूब नहीं हो सकता और उसकी शान दरोह गो लोगों की सिफात से मुनज़्ज़ा है। उसके वादे को देख फिर देख के सलीबी दावत किस कमाल तक पहुँच गई है और उसके जवाल की उम्मीद कता हो चुकी है, और तुम देखते हो कि उसके खैमे रस्सों के ज़रिए कैसे मजबूत हो गए हैं और उनका लंबा रस्सा इकबाल का नहायत पुख्ता हो गया है और उनके दीन में एक फ़ौज कसीर मुसलमानों की दाखिल हो चुकी है और हमारा मुल्क मुर्तदों से भर गया है और इससे ज़्यादा मोमिनों पर और कौन सी जान का सख्ती होगी, और उन्होंने इस्लाम की तकजीब की और नसीहत ने कुछ भी फ़ायदा न दिया और नाबाज आए, और हम ये उम्मीद रखते थे कि ईसाइयों को अपने गिरोह में शामिल कर लेंगे, और अब हमारा ही रासुलमाल छीना गया और हमारे गुमराह करने के पीछे पड़े हैं, और उन्होंने बेटों को बापों से और दोस्तों को दोस्तों से और माओं को बच्चों से और बूढ़ी औरतों को उनके जिगर गोशों से जुदा कर दिया है। अब देखो कि क्या इस्लाम गरीब के लिए अभी वक्त नहीं आया कि कसरे सलीब के लिए मदद दिया जाए। हाशिया, हम कसरे सलीब के माने बयान कर चुके हैं, बस चाहिए कि पढ़ने वाला इन मानों की तरफ रुजू करे और याद रखे कि जो उलमा में माने मशहूर हैं वो गलत हैं। क्या अभी वक्त नहीं आया कि खुदा ताला के वादे पूरे हों, हालांकि दीन इस्लाम नसरानियत के कदमों के नीचे कुचला गया है, और ज़रा फिक्र करो कि आया ये मसलहत के दीन को बचाया जावे तकाजा नहीं करती थी कि इस सदी के सर पर कोई मुजद्दिद निशानों और दलाइल के साथ मबूस किया जाए ताकि वो इस बुनियाद को तोड़े कि जो अहले सलीब ने बनाई और तमाम दीनों पर दीन इस्लाम को गलबा देवे।